अनिवार्य ओपनिंग नरेशन, अनिवार्य ओपनिंग नरेशन। एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज की हमारी बातचीत का केंद्र है किंग्सली एमएस का बहुत ही मशहूर और मजेदार उपन्यास लकी जिम।
जी हाँ, लकी जिम। किंग्सली एमएस मतलब 20वीं सदी के एक बड़े अंग्रेजी लेखक माने जाते हैं,
और उनका नाम जुड़ता है 1950s के दशक के एंग्री यंग मैन आंदोलन से। वो एक दौर था ना ब्रिटेन में युद्ध के बाद, थोड़ी निराशा सी थी और युवा लेखक समाज के पाखंड, वर्ग व्यवस्था, इन सब पर सवाल उठा रहे थे।
बिल्कुल, और एमएस की खासियत है उनका व्यंग्य, बहुत तीखा पर हंसाने वाला। और उनके हीरो भी कोई महान योद्धा नहीं होते, बल्कि साधारण लोग, कमजोरियों से भरे हुए।
हाँ, जैसे हम सब। और लकी जिम ये तो 1954 में आया, उनका पहला ही उपन्यास था और आते ही छा गया।
हाँ, इसे अक्सर कैंपस नॉवल कहते हैं क्योंकि कहानी एक यूनिवर्सिटी के माहौल में सेट है, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। इसने ब्रिटिश साहित्य में एंटी हीरो की एक नई छवि बनाई, मतलब ऐसा हीरो जो हीरो जैसा है ही नहीं।
अच्छा, तो ये कहानी है कहाँ की? आपने कहा यूनिवर्सिटी।
ये इंग्लैंड के मिडलैंड्स में है एक यूनिवर्सिटी जिसे रेड ब्रिक यूनिवर्सिटी कहा जाता है, मतलब ऑक्सफ़ोर्ड, कैम्ब्रिज जैसी पुरानी नामी यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि थोड़ी नई, शायद उतनी ग्लैमरस नहीं।
ठीक है, और यहीं हम मिलते हैं जिम डिक्सन से। तो कौन है ये जिम डिक्सन और उसकी उलझन क्या है, जरा बताइए।
तो जिम डिक्सन जो है वो मध्यकालीन इतिहास का एक जूनियर लेक्चरर है, नया नया, और उसका प्रोबेशन पीरियड मतलब नौकरी पक्की होने का जो साल होता है वो खत्म होने वाला है।
अच्छा, तो नौकरी दांव पर है।
हाँ बिल्कुल, और उसकी नौकरी पक्की होगी या नहीं ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपने डिपार्टमेंट हेड प्रोफेसर वेल्च को कितना खुश रख पाता है।
ओ, प्रोफेसर वेल्च, तो सारा दारोमदार उन पर है।
जी।
और यहीं से शुरू होती है जिम की असली मुसीबत, क्योंकि जिम को ना तो अपने विषय मध्यकालीन इतिहास में कोई खास रुचि है, ना ही यूनिवर्सिटी के उस बनावटी दिखावे वाले माहौल में। वो एकदम जैसे फिट नहीं बैठता वहां, एक बिन बुलाया मेहमान जैसा।
हाँ समझ गया, तो यही उपन्यास का कह सकते हैं केंद्रीय तनाव है। एक तरफ तो नौकरी बचानी है, तो जैसा माहौल है वैसा ढलना पड़ेगा, दिखावा करना पड़ेगा।
हाँ, जिसे अंग्रेजी में कन्फॉर्मिटी कहते हैं, अनुरूपता।
और दूसरी तरफ है उसकी अपनी असलियत, उसके अंदर की चिढ़, गुस्सा, मतलब विद्रोह करने की इच्छा।
बिल्कुल, और जिम के वो मशहूर प्राइवेट फेसेस है ना, वो अजीब अजीब से चेहरे जो वो अकेले में या लोगों की पीठ पीछे बनाता है।
हाँ सुना है उसके बारे में।
और उसके मन में जो तीखी बातें चलती रहती हैं, उसके जो इंटरनल मोनोलॉग्स हैं, वो इसी अंदरूनी कशमकश को दिखाते हैं। वो मनी मन सबकी खिल्ली उड़ाता है, पर बाहर से बेचारा विनम्र बना रहता है। तो ये बड़ा मजेदार विरोधाभास है, और शायद यही हंसी भी पैदा करता है।
हाँ, हास्य का बड़ा स्रोत यही है।
तो ये उपन्यास एक बुनियादी सवाल भी उठाता है ना, कि क्या इस दुनिया में जो अक्सर झूठी और सतही लगती है, टिके रहने के लिए अपनी ईमानदारी को कुर्बान करना ही पड़ता है।
हाँ ये सवाल तो है।
और जिम के लिए ये चुनौती दो लोग और मुश्किल बना देते हैं, एक तो प्रोफेसर वेल्च जिनके हाथ में उसकी नौकरी है, और दूसरी मार्गरेट पील जो उसकी पर्सनल लाइफ में एक पहेली बनी हुई है। जरा इनके बारे में बताइए।
प्रोफेसर वेल्स जो हैं वो एक भुलक्कड़ किस्म के अकादमिक हैं, अपने ही ख्यालों में गुम। इतिहास विभाग के हेड हैं पर जिम का नाम तक भूल जाते हैं कई बार।
अच्छा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होकर।
जी हाँ, और उन्हें एक अजीब सा जुनून है मेरी इंग्लैंड से, मतलब इंग्लैंड के मध्यकालीन अतीत की एक बहुत ही रोमानी, शायद झूठी ही तस्वीर।
मेरी इंग्लैंड। और मार्गरेट पील।
मार्गरेट पील वो थोड़ा जटिल किरदार है, वो खुद को बहुत नाजुक, संवेदनशील और दुखियारी दिखाती है, और जिम को एक तरह से अपराध बोध में फंसाए रखती है।
तो जिम एक तरफ अकादमिक दुनिया के पाखंड और भुलक्कड़पन प्रोफेसर वेल्च, और दूसरी तरफ ये भावनात्मक जालसाजी मार्गरेट के बीच फंसा हुआ है।
हाँ बिल्कुल, दोहरी मार है उस पर।
चलिए जिम पर वापस आते हैं। उसे एंटी हीरो क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या है उसमें जो पारंपरिक हीरो से अलग है?
देखिए, जिम में वो वीरता वाले गुण बिल्कुल नहीं है। वो आलसी है, अपनी हालत पर तरस खाता रहता है, कई बार डरपोक भी लगता है, और उसकी इच्छाएं भी बड़ी मामूली सी हैं। बस नौकरी बची रहे, शांति से जीने को मिले, कोई तंग ना करे।
हाँ, आम आदमी वाली इच्छाएं।
लेकिन उसके अंदर एक ईमानदारी है, एक गुस्सा है जो उसे दिलचस्प बनाता है, और उसका जो विकास है कहानी में, वो ऐसा नहीं कि वो कोई महान आदमी बन जाता है, बल्कि वो धीरे धीरे उस पॉइंट पर पहुंचता है जहां वो और बर्दाश्त नहीं कर पाता।
तो ये सफर परिपक्वता का नहीं, बल्कि कह सकते हैं प्रामाणिकता की तरफ एक लड़खड़ाता हुआ कदम है।
हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब मार्गरेट की बात करें, आपने कहा वो भावनात्मक रूप से जोड़ तोड़ करती है, ये कैसे पता चलता है?
मार्गरेट बार बार जिम को ये महसूस कराती है कि उसे जिम की बहुत जरूरत है। खासकर उसने एक बार कथित तौर पर आत्महत्या की कोशिश की थी, तो वो उसी का हवाला देकर जिम की सहानुभूति और जिम्मेदारी की भावना का फायदा उठाती है।
ओह, ये तो इमोशनल ब्लैकमेल जैसा हुआ।
हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब नाटक था, पुरुषों को कंट्रोल करने का उसका तरीका, और असल में उसका किसी और सहकर्मी के साथ अफेयर चल रहा था। वो एक तरह की भावनात्मक पिशाच है जो दूसरों की भावनाओं से खेलती है।
ये तो बिल्कुल उसी दिखावे का उदाहरण है जिससे जिम चढ़ता है। और प्रोफेसर वेल्च, क्या वो सिर्फ भुलक्कड़ हैं या उनका किरदार कुछ और भी दिखाता है? आपने मेरी इंग्लैंड का जिक्र किया, वो क्या भला है? वेल्च सिर्फ भुलक्कड़ नहीं है, वो उस पूरी पुरानी जड़ व्यवस्था का प्रतीक है, जहां काबिलियत से ज्यादा ये देखा जाता है कि कौन कितने समय से टिका हुआ है। मेरी इंग्लैंड उनका प्रिय विषय है, मध्यकालीन इंग्लैंड की एक बेहद रोमांटिक, एकदम आदर्श तस्वीर जिसका सच्चाई से शायद कोई लेना देना नहीं।
अच्छा, मतलब इतिहास की एक मनगढ़ंत सुनहरी तस्वीर।
हाँ, और वेल्च उसी अतीत में खोए रहते हैं, आज की दुनिया से कटे हुए। जिम को उनके साथ बोरिंग म्यूजिक इवनिंग्स में जाना पड़ता है, उनकी खतरनाक ड्राइविंग सहनी पड़ती है। ये सब सीन मजेदार तो हैं, पर ये उस पूरी व्यवस्था की निरर्थकता भी दिखाते हैं जिस पर जिम का भविष्य टिका है।
तो वेल्च पुरानी मृतप्राय परंपरा के प्रतीक है, लेकिन कहानी में कोई उम्मीद की किरण भी है। क्रिस्टीन कैलाहान, वो कैसे आती है कहानी में?
क्रिस्टीन की एंट्री होती है प्रोफेसर वेल्च के घमंडी बेटे बर्ट्रन की गर्लफ्रेंड के तौर पर, तो शुरू में लगता है कि वो भी उसी सतही दिखावती दुनिया का हिस्सा है जिससे जिम नफरत करता है। सुंदर है, फैशनेबल है, लेकिन जिम को जल्द ही पता चलता है कि उसमें कुछ अलग बात है। उसमें हास्य की समझ है, वो प्रैक्टिकल है, और उसे भी पाखंड पसंद नहीं। वो मार्गरेट से एकदम अलग है। उपन्यास में वो उम्मीद और असलियत की तरह आती है।
अच्छा, और बर्ट्रेंड, ये बेटा कैसा है?
बर्ट्रेंड वेल्च, वो नए जमाने के दिखावे और अहंकार का नमूना है। खुद को बड़ा आर्टिस्ट समझता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन अंदर से खोखला है। क्रिस्टीन से भी ठीक से बात नहीं करता, और जिम को तो जैसे कुछ समझता ही नहीं।
तो जिम और बर्ट्रेंड के बीच तनातनी भी होगी फिर क्रिस्टीन को लेकर?
हाँ बिल्कुल, वो सीधी टक्कर है। एक तरफ जिम की वो भोंडी सी ईमानदारी, दूसरी तरफ बर्ट्रेंड का चालाक दिखावा, और क्रिस्टीन बीच में। इससे कहानी में और ड्रामा आता है।
तो ये किरदारों का जाल जिम की मुश्किलों को और बढ़ा देता है। अब कहानी आगे कैसे बढ़ती है? जिम की रोज की जिंदगी कैसी है?
शुरू में हम देखते हैं कि जिम कैसे एक बहुत ही बोरिंग टॉपिक, मध्यकालीन जहाज निर्माण पर एक जरूरी अकादमिक लेख लिखने के लिए संघर्ष कर रहा है। मध्यकालीन जहाज निर्माण,
हाँ, बोरिंग तो लगता है।
और साथ ही वो लगातार कोशिश कर रहा है कि मार्गरेट की इमोशनल डिमांड से बच सके। उसका जीवन बहुत घुटन भरा लगता है। वो तनाव साफ दिखता है, नौकरी के लिए ढोंग करना है, पर अंदर से मन करता है कि सब छोड़ छाड़ दे।
और फिर आता है वो वीकेंड प्रोफेसर वेल्च के घर पर। वो तो बहुत मशहूर सीन है ना? क्या गड़बड़ होती है वहाँ?
हाँ, वो तो पूरी कॉमेडी ऑफ एरर्स है। जिम को वेल्च के घर एक आर्ट्स वीकेंड के लिए जाना पड़ता है। सोचिए, बोरिंग मध्यकालीन संगीत, मैड्रिगल सिंगिंग और वेल्च की अंतहीन बातें,
अंदाजा लगा सकता हूँ।
तो जिम बोरियत और घबराहट मिटाने के लिए थोड़ी ज्यादा ही पी लेता है, नशे में धुत बिस्तर पर सिगरेट सुलगाता है और सो जाता है। नतीजा, मेहमान वाले कमरे की महंगी चादर और गद्दे में एक बड़ा सा जलने का निशान।
अरे बाप रे, फिर?
अगली सुबह जब नशा उतरता है तो वो उसे छुपाने की जो हताश और हास्यास्पद कोशिशें करता है, कैंची से चादर काटना, दूसरे कमरे से चादरें बदलने की कोशिश करना, वो सब इतना मजेदार है पर साथ ही दुखद भी। सब कुछ और बिगड़ जाता है। शुद्ध प्रहसन है वो।
और इसी गड़बड़ के बीच उसकी मुलाकात क्रिस्टीन से ठीक से होती है।
हाँ बिल्कुल, इसी वीकेंड पर वो क्रिस्टीन के ज्यादा करीब आता है और उस पर फिदा हो जाता है। अब उसकी जिंदगी में एक नई वजह आ जाती है, क्रिस्टीन को उस घमंडी बर्ट्रेंड से बचाना या जीतना। लेकिन ये वीकेंड वेल्च परिवार पर उसका इंप्रेशन और खराब कर देता है।
जाहिर है, इसके बाद तो जिम पर दबाव और बढ़ा होगा।
हाँ बिल्कुल, यूनिवर्सिटी के डांस फंक्शन में भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसका अपमान होता है, मार्गरेट के साथ रिश्ता और ज्यादा बोझ लगने लगता है, हर तरफ से निराशा ही हाथ लगती है। और जिम का अंदर का गुस्सा खौलता रहता है। लगता है कि अब बस ये फटने ही वाला है।
और फिर आता है वो मोमेंट, उसका पब्लिक लेक्चर। ये आखिरी मौका था नौकरी बचाने का। क्या होता है उस लेक्चर में?
ये उपन्यास का क्लाइमैक्स है। जिम को लेक्चर देना है मेरी इंग्लैंड पर, वही प्रोफेसर वेल्च का पसंदीदा टॉपिक, और सामने पूरी फैकल्टी बैठी है।
दबाव तो बहुत होगा।
हाँ, तो घबराहट में हिम्मत जुटाने के लिए वो फिर से बहुत ज्यादा शराब पी लेता है।
ओह, फिर से?
हाँ, और नतीजा, लेक्चर शुरू तो होता है पर जल्दी ही एक भयानक मजाक बन जाता है। शराब के नशे में जो हिम्मत आती है ना, जिसे डच करेज कहते हैं,
हाँ,
उसकी वजह से जिम का सारा दबा हुआ गुस्सा, सारी चिढ़ बाहर फूट पड़ती है। वो अनजाने में पहले तो प्रोफेसर वेल्च की नकल करने लगता है।
क्या बात है, बॉस की ही नकल।
हाँ, और फिर वो अपने लेक्चर के टॉपिक मेरी इंग्लैंड के ही खिलाफ एक जोरदार बेतुका भाषण दे डालता है। वो उस रोमांटिक अतीत की धारणा की धज्जियां उड़ा देता है। कहता है कि यह सब बकवास है, अप्रासंगिक है, ये सच्चाई का एक नशे में धुत पर शानदार विस्फोट होता है।
और अविश्वसनीय, ये तो मतलब उसने खुद ही अपनी नौकरी खत्म कर ली, पर एक तरह से आजाद भी हो गया।
हाँ बिल्कुल, ये उसकी पेशेवर आत्महत्या थी पर शायद उसकी आत्मा की आवाज भी।
लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? नौकरी तो गई होगी पक्का।
बिल्कुल, उसे फौरन नौकरी से निकाल दिया जाता है। लगता है कि बस सब खत्म, जिम हार गया। लेकिन यही कहानी में आता है एक दिलचस्प मोड़, किस्मत का खेल।
अच्छा, क्या होता है?
उस लेक्चर को सुनने वालों में क्रिस्टीन के एक अमीर और थोड़े सन की चाचा मिस्टर गोर अर्क्वाट भी मौजूद थे, और अकादमिक दुनिया के लोगों के विपरीत गोर अर्क्वाट को जिम का ये विद्रोही अंदाज, ये ईमानदारी बहुत पसंद आई।
अरे वाह, ये तो सोचा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया?
उन्हें जिम का ये पाखंडी दुनिया पर किया गया हमला भा गया। वो जिम को लंदन बुलाते हैं और अपने पर्सनल असिस्टेंट की नौकरी ऑफर करते हैं। अच्छी सैलरी वाली नौकरी, जो यूनिवर्सिटी की नौकरी से कहीं बेहतर थी।
क्या बात है, मतलब जिस हरकत से नौकरी गई उसी से बेहतर नौकरी मिल गई।
हाँ, यही तो किस्मत है लकी जिम की।
वाह, ये तो कमाल का मोड़ है। और मार्गरेट का क्या हुआ? उसका पर्दाफाश हुआ?
हाँ, कहानी के अंत में जिम को ये भी पता चल जाता है कि मार्गरेट की वो सुसाइड की कोशिश झूठी थी और वो तो किसी और सहकर्मी के साथ मिली हुई थी।
अच्छा,
तो इस जानकारी से जिम का सारा अपराध बोध खत्म हो जाता है और अंत में वो पूरे आत्मविश्वास के साथ मार्गरेट और बर्ट्रेंड का सामना करता है, उन्हें दो टूक सुनाता है।
खरी खरी?
हाँ, खरी खरी सुनाता है। फिर क्रिस्टीन का हाथ पकड़ता है और लंदन अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए निकल पड़ता है।
तो जो आदमी पूरी कहानी में हारा हुआ फंसावा लग रहा था, अंत में उसे लड़की भी मिली, अच्छी नौकरी भी और आजादी भी। इसीलिए किताब का नाम लकी जिम है, थोड़ी विडंबना के साथ।
हाँ बिल्कुल, वो लकी था पर शायद उसकी किस्मत उसके उस अनजाने विद्रोह का ही नतीजा थी।
तो चलिए अब जरा उपन्यास के मुख्य विषयों पर बात कर लें। सबसे बड़ा मुद्दा तो प्रमाणिकता बनाम दिखावा ही लगता है ना, जिम की पूरी लड़ाई इसी से है।
हाँ बिल्कुल, और उपन्यास साफ तौर पर प्रमाणिकता का साथ देता है, भले ही वो जिम की तरह थोड़ी अटपटी, गुस्सैल या सामाजिक तौर पर अजीब ही क्यों ना हो। वेल्च परिवार का खोखलापन, बर्ट्रेंड का झूठा आर्टिस्ट वाला अंदाज, मार्गरेट की बनावटी भावनाएं, ये सब उस दिखावे के उदाहरण हैं जिनसे एमिस को नफरत है।
और जिम का वो नशे वाला भाषण, वो भले ही नशे में था पर था तो सच्चा।
हाँ, वो उसका सच्चा रूप था जो बाहर आया। शायद संदेश यही है कि अपनी असलियत को दबाए रखने से अच्छा है उसे जाहिर कर देना, चाहे नतीजा जो भी हो।
और दूसरा बड़ा थीम है व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह। यूनिवर्सिटी यहाँ सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे ब्रिटिश समाज, खासकर उसके संस्थानों का प्रतीक बन जाती है। जिम एक बाहरी आदमी है जो सिस्टम की गड़बड़ियां देख पाता है।
गन व्यवस्था पर एक प्रतीकात्मक जीत है। ये उस पूरी पीढ़ी की आवाज भी थी जो पुराने ढर्रे पर सवाल उठा रही थी।
ये भी दिलचस्प है कि जिम एक एंटी हीरो है और उसकी सफलता पारंपरिक तरीके से नहीं आती, मतलब मेहनत या काबिलियत से नहीं बल्कि गलतियों और किस्मत से। क्या एमिस ये कह रहे हैं कि दुनिया इतनी अजीब है कि सफलता योग्यता से नहीं बस संयोग से मिलती है?
ये एक बड़ा सवाल है जो उपन्यास हमारे लिए छोड़ जाता है। जिम की किस्मत शायद यही दिखाती है कि बने बनाए नियम हमेशा काम नहीं करते। कभी कभी नियमों को तोड़ने से या कम से कम उस खेल को खेलने से मना करने से नए रास्ते खुल सकते हैं। ये योग्यता के आधार पर सफलता पर एक तरह की चुटकी भी है।
और हाँ, सामाजिक वर्ग का मुद्दा भी है। जिम का निचले मध्यम वर्ग से आना, वेल्श परिवार के उच्च मध्यम वर्गीय माहौल में असहज होना, और संस्कृति की आलोचना भी, जैसे वेल्श का वो मेरी इंग्लैंड वाला जुनून या बर्ट्रेंड का मॉडर्न आर्ट का ढोंग।
हाँ, एमएस हर तरह के दिखावे पर चोट करते हैं, चाहे वो पुराना हो या नया।
इस उपन्यास का भावनात्मक असर क्या है? क्यों लोग इससे इतना जुड़ पाते हैं, हंसते हैं?
मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा असर है रेचन या कैथार्सिस। हर वो व्यक्ति जिसने कभी किसी घुटन भरी नौकरी में काम किया हो, या झूठे सामाजिक दिखावे झेले हों, या चालाक लोगों का सामना किया हो, वो जिम की फ्रस्ट्रेशन को समझेगा।
हाँ, ये बात तो है।
और जब जिम अंत में फट पड़ता है तो पढ़ने वाले को भी एक राहत मिलती है, जैसे उसकी अपनी दबी हुई आवाज बाहर आ गई हो। एक आम कमजोर आदमी की ताकतवर पाखंडी सिस्टम पर जीत में एक अजीब सा संतोष मिलता है।
तो ये सिर्फ हंसाता नहीं, एक तरह की भावनात्मक राहत भी देता है। और इसकी विरासत क्या है, ये आज भी क्यों महत्वपूर्ण है?
इसकी विरासत कई है। इसने एंटी हीरो को ब्रिटिश साहित्य में एक मजबूत जगह दी, इसने एक पूरी पीढ़ी की भावनाओं को आवाज दी, और आज भी ये हमें सत्ता पर, नियमों पर सवाल उठाने की हिम्मत देता है। ये सिखाता है कि दिखावे पर शक करना जरूरी है। ये एक तरह की साफ, बिना बनावट वाली ईमानदारी की वकालत करता है।
और ये सवाल भी तो बना रहता है कि जिम सच में सिर्फ लकी था, या उसकी अपनी असलियत पर टिके रहने की जिद ने ही उसके लिए वो रास्ते खोले। शायद दुनिया अजीब और अन्याय भरी हो सकती है, पर अपने सच के साथ खड़े रहने का अपना ही महत्व है।
और कभी कभी उसका अप्रत्याशित इनाम भी मिलता है।
बिल्कुल, शायद कहानी यही सिखाती है कि अपने प्रति सच्चा रहना, भले ही वो रास्ता अटपटा लगे, आखिर में ज्यादा मायने रखता है।
अनिवार्य क्लोजिंग लाइन।
अनिवार्य क्लोजिंग लाइन। ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।